नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। अवाडा समूह ने गुजरात में 6000 मेगावाट के हाइब्रिड पवन सौर परियोजनाएं विकसित करने के लिए 40,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। कंपनी की ओर से जारी बयान के अनुसार 10 से 12 जनवरी तक गांधीनगर में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में अवाडा समूह ने गुजरात सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस रणनीतिक गठबंधन का लक्ष्य राज्य में करीब 40,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ कुल 6,000 मेगावाट क्षमता वाली हाइब्रिड पवन सौर परियोजनाएं स्थापित करना है। अवाडा समूह के चेयरपर्सन विनीत मित्तल ने बयान में कहा, ये रणनीतिक साझेदारी एक मजबूत स्वच्छ ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इसके अलावा हम पहले से ही 2 गीगावाट क्षमता की परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं जो गुजरात राज्य में चालू हैं या कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। अवाडा समूह सौर मॉड्यूल, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और हरित हाइड्रोजन, हरित मेथनॉल, हरित अमोनिया तथा टिकाऊ विमानन ईंधन के लिए बड़े पैमाने पर परियोजनाओं के विकास का काम करता है। वाणिज्य मंत्रालय ने विश्व व्यापार संगठन की अगले महीने होने वाली अहम बैठक में उठने वाले मुद्दों पर चर्चा के लिए 20 जनवरी को सरकारी अधिकारियों और व्यापारिक विशेषज्ञों समेत सभी हितधारकों की एक बैठक बुलाई है। एक अधिकारी ने ये जानकारी दी। WTO का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन 26 से 29 फरवरी को संयुक्त अरब अमीरात के अबूधाबी में होने वाला है। मंत्री स्तरीय सम्मेलन 164 सदस्यों वाले WTO का सर्वोच्च निर्णायक निकाय है। ये सदस्य देशों के बीच विवादों का निपटारा करने के अलावा वैश्विक निर्यात और आयात पर भी नजर रखता है। इस बैठक में भारत के व्यापार से जुड़े कई अहम मुद्दों को उठाए जाने की संभावना है। इसमें शामिल मुद्दों में कृषि, खाद्य सुरक्षा, विवाद निपटान, सुधार, ई कॉमर्स और मत्स्य पालन सब्सिडी शामिल हैं। अधिकारी ने कहा, हम 20 जनवरी को इन मुद्दों पर सभी हितधारकों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। भारत ने मंत्री स्तरीय बैठक में खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक भंडारण के मुद्दे का स्थायी समाधान खोजने की मांग की है। इसने PSH और SSM से परे वैकल्पिक खाद्य सुरक्षा समाधान के तर्कों को खारिज कर दिया है। ई कॉमर्स क्षेत्र पर WTO के सदस्यों ने 1998 से ही इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण पर सीमा शुल्क नहीं लगाने पर सहमति जताई है, हालांकि भारत इसे जारी रखने का विरोध कर रहा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सोमवार को कहा कि खाते में राशि होने के बावजूद अधूरे KYC वाले फास्टैग 31 जनवरी के बाद निष्क्रिय कर दिए जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली की दक्षता बढ़ाने और टोल प्लाजा पर वाहनों के निर्बाध आवाजाही को संभव बनाने के लिए NHAI ने एक वाहन एक फास्टैग पहल लागू की है। इसका उद्देश्य कई वाहनों के लिए एक ही फास्टैग के इस्तेमाल या एक विशेष वाहन के लिए कई फास्टैग जोड़ने को हतोत्साहित करना है। सार्वजनिक क्षेत्र के निकाय NHAI ने बयान में कहा कि फास्टैग का इस्तेमाल करने वाले वाहन चालकों को रिजर्व बैंक दिशा निर्देशों के अनुरूप अपने फास्टैग की KYC प्रक्रिया पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। बयान के मुताबिक किसी भी तरह की असुविधा से बचने के लिए उपयोगकर्ताओं को ये सुनिश्चित करना होगा कि उनके नवीनतम फास्टैग का KYC पूरा हो गया है। इसके साथ ही उपयोगकर्ताओं को एक वाहन एक फास्टैग का भी पालन करना होगा और अपने बैंकों के माध्यम से पहले जारी किए गए सभी फास्टैग को हटाना होगा। NHAI ने कहा, केवल नवीनतम फास्टैग खाता ही सक्रिय रहेगा क्योंकि पिछले फास्टैग 31 जनवरी 2024 के बाद निष्क्रिय या प्रतिबंधित कर दिए जाएंगे। इस संबंध में किसी भी तरह की सहायता या जानकारी के लिए फास्टैग उपयोगकर्ता अपने नज़दीकी टोल प्लाजा या संबंधित जारीकर्ता बैंकों के टोल फ्री ग्राहक सेवा नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। NHAI ने ये कदम एक वाहन के लिए कई फास्टैग जारी किए जाने और RBI के आदेश का उल्लंघन करते हुए KYC के बिना फास्टैग जारी किए जाने की हालिया रिपोर्टों के बाद उठाया है। देश भर में 8 करोड़ से अधिक वाहन चालक फास्टैग का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कुल वाहनों का लगभग 98% है। इस व्यवस्था ने देश में इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली की रफ्तार में काफ़ी तेज़ी आई है। आम चुनाव से पहले पेश होने वाले अंतरिम बजट से पहले सरकार लोक लुभावन घोषणाओं से बचेगी और राजकोषीय मजबूती पर ध्यान देना जारी रखेगी। अर्थशास्त्रियों ने यह राय जताई है। हालांकि अर्थशास्त्रियों का कहना है कि पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग के बीच NPS को आकर्षक बनाने के साथ महिलाओं के लिए अलग से कुछ कर छूट मिलने की उम्मीद है। साथ ही चुनावी वर्ष में मानक कटौती की राशि बढ़ाकर नौकरी पेशा और मध्यम वर्ग को कुछ राहत दिए जाने की भी संभावना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में 1 फरवरी को 2024-25 का अंतरिम बजट पेश करेंगी। ये उनका छठा बजट है। जाने माने अर्थशास्त्री और वर्तमान में बेंगलुरु स्थित डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी के कुलपति एन आर भानुमूर्ति ने भाषा से बातचीत में कहा, सरकार के पिछले रुख को देखते हुए आगामी अंतरिम बजट के लोक लुभावन होने की संभावना नहीं है। इसका कारण यह है कि प्रधानमंत्री पहले ही गरीब कल्याण अन्न योजना जैसे कुछ उपायों की घोषणा कर चुके हैं, जिनके आने वाले वर्ष में भी जारी रहने की संभावना है। उन्होंने कहा, हालांकि ऐसी उम्मीदें हैं कि कई राज्यों में पुरानी पेंशन योजना के राजनीतिक मुद्दा बनने को देखते हुए सरकार पेंशन व्यवस्था को आकर्षक बनाने के लिए संभवतः बजट में कुछ घोषणा कर सकती है। उल्लेखनीय है कि पंजाब, राजस्थान समेत कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की गई है। इसको देखते हुए अन्य राज्यों और केंद्रीय कर्मचारी भी पुरानी पेंशन लागू करने की मांग कर रहे हैं। इसको देखते हुए सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की समीक्षा और उसमें सुधार के लिए वित्त सचिव टी वी सोमनाथन की अध्यक्षता में पिछले साल अप्रैल में समिति बनाई थी। समिति संभवतः इस महीने के अंत में अपनी रिपोर्ट देगी। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।